ओम शांति।
ओम शांति।
बाबा के साथ सभी खुश हैं? कोई दुख है? पक्का नहीं?
लौकिक में, अलौकिक में, पारलौकिक में कोई दुख है जीवन में? कुछ सवाल पूछते हैं आपसे। सवाल ये, हम परिवार में हैं, कोई क्लास नहीं, कोई लेक्चर नहीं, हम डिस्कशन कर रहे हैं। बाबा के ज्ञान को गहराई में उतारने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी बातें बहुत सहज हो जाए।
क्या आपको पक्का यकीन है कि शिव बाबा ही फाइनल भगवान है या उसके आगे कोई है? निश्चय है? पक्का? पक्का निश्चय है किसी को? और जो ज्ञान वो सुना रहा है वो सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा, होलियस्ट और हाईएस्ट ज्ञान है, इसका भी पक्का निश्चय है? बहुत अच्छा। अगर देने वाला ऊंचा है और जो बात दे रहा है सबसे ऊंची है, और फिर भी अभी तक हम रो क्यों रहे हैं? बहुत सी आत्माएं अभी तक रो रही हैं। ज्ञान में बहुत सालों से चल रहे हैं फिर भी आगे पीछे हो रहा है। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक स्थिति के बारे में इसका कारण क्या है? बाबा बहुत बार ही मुरली में कहते हैं कि किसी बात को अगर विधि से किया जाए तो सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है। कोई भी बात, एक साधारण बात, भोजन बनाने से लेकर योग करने तक विधि से किया जाए तो सिद्धि अपने आप मिलती है। कोई भोजन का कोई पार्ट, मतलब कोई भोजन का एक मेनू बनाना है तो अब देखिए उसके सारे इंग्रेडिएंट अपने पास हैं, लेकिन कितने परसेंटेज में, कितने प्रोपोर्शन में डालना है अगर ये पता नहीं है तो भोजन स्वादिष्ट नहीं बनेगा। तो देने वाला ऊंचा है, ज्ञान को उससे भी ऊंचा है, लेकिन हम उसे सही ढंग से अगर अप्लाई करें जीवन में तो जीवन बहुत सहज हो जाएगी। जिसे बाबा प्राचीन राजयोग के रूप में लाता है ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, असाधारण ज्ञान है। इसमें इतनी ताकत है, देखिए जो ज्ञान विश्व का परिवर्तन कर सकता है क्या वो हमारा परिवर्तन नहीं कर सकता? तो हम कहां तक रुके हैं, इसका कारण क्या है, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, परिवर्तन की घड़ी कहां रुकी हुई है, इसको ढूंढना पड़ेगा। बाबा 80 साल से कह रहे हैं गच्छ तुम आत्मा हो। हम सभी को कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तन करने वाले ईश्वर के बच्चे हैं, हम नवयुग को लाने वाले परमात्मा के बच्चे हैं। तो क्यों नहीं आ रहा है नवयुग, क्या कारण है न आने का? कुछ तो हो सकता है, इतने साल से लगातार हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। छोटी सी बात, एक दीदी जी के पास एक वीआईपी आए हुए थे, तो दीदी जी ने वीआईपी को समझाया कि ये जो ज्ञान है सबसे ऊंचा ज्ञान है, स्वयं परमात्मा हमें दे रहे हैं, इस ज्ञान से आत्माएं संपन्न और संपूर्ण बन जाती हैं, दीदी जी ने समझाया। वीआईपी बहुत अच्छे बुद्धि वाले थे, उन्होंने कहा कि आपकी संस्था को कितने साल हुए? दीदी जी ने कहा 80 साल हो गए। तो 80 साल में कितने संपन्न और संपूर्ण हैं? सिंपल क्वेश्चन पूछा। ब्रह्मा बाबा एक, मम्मा, वरिष्ठ दादी या वरिष्ठ भाई, बस। तो उन्होंने कहा कि अगर इस ज्ञान से संपन्न और संपूर्ण होते हैं तो पहले आप बनो, फिर हम जरूर आएंगे। मतलब सभी आत्माएं हम में वो संपन्नता देखना चाहते हैं। हम कहते हैं भगवान के बच्चे हैं और हम में वो संपन्नता नहीं है, दिव्यता नहीं है, तो उसका कारण क्या है? देने वाला सबसे ऊंचा है, ज्ञान सबसे ऊंचा है, तो कारण कहाँ है कि किस कारणवश ये रुका हुआ है परिवर्तन? उसकी जो विधियां हैं, उसके जो कारण हैं, उनको हम निवारण में डिस्कस करेंगे। अभी बाबा जैसे कि 80 साल से कह रहे हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो। आत्मिक स्थिति का अभ्यास आप में से कितनी आत्माओं ने गहराई से किया है, सिंपल क्वेश्चन, कभी चेक करके देख लीजिए, कभी चेक करके देख लीजिए। आत्मिक स्थिति कोई साधारण स्थिति नहीं है, बिल्कुल साधारण स्थिति नहीं है। हम एक एक्सपेरिमेंट आपसे शेयर कर रहे हैं, आप ट्राई करके देख लीजिए। खुद को आत्मा समझ के जानबूझ के विकर्म करने का प्रयास कीजिए, देखिए होता है क्या। खुद को आत्मा समझ के जानबूझ के किसी के लिए अपशब्द बुरे बोल बोलने का प्रयास कीजिए, और किसी को किसी के लिए बुरे विचार क्रिएट करने का प्रयास कीजिए। आत्मा समझ के ट्राई करके देख लीजिए होता है क्या, संभव ही नहीं है। आत्मिक स्थिति स्वयं में एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में सारी संपन्नता समाई हुई है। आत्मिक स्थिति में अपने आप खुद जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब तो पता चलता है गुड़ कैसा है। कहने वाला लाख कह रहा है कि गुड़ मीठा है, लेकिन खाने वाले को टेस्ट चाहिए। खाने वाला जब खाता है तब बोलता है कि सच में गुड़ मीठा है। तो आत्मिक स्थिति स्वयं में एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में आने के बाद आपसे किसी भी प्रकार का वेस्ट और नेगेटिव कर्म बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ट्राई करके देख लीजिए, जानबूझ के बोल रहे हम आपको, जबरदस्ती ट्राई करने का प्रयास कीजिए। बार बार जबरदस्ती विकर्म करने का प्रयास कीजिए, संकल्प ही नहीं उठेंगे विकर्म करने के, ऐसी स्थिति है। और आत्मिक स्थिति में सारी संपन्नता और संपूर्णता है, मतलब आपके आसपास की जितनी भी आत्माएं हैं सारी अपनी स्थिति में आ जाए। आत्मिक स्थिति में आने के बाद बाबा कहते हैं ना, जैसे सन्नाटा हो जाता है शरीर छोड़ते हैं, वैसे आत्मिक स्थिति में गहराई वाले आने के बाद सन्नाटा हो जाता है। हम तो सभी को कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तन करने वाले ईश्वर के बच्चे हैं, तो हमें स्व परिवर्तन की पहली सीढ़ी पहला पाठ बहुत पक्का करना पड़ेगा, तब जाके विश्व परिवर्तन होगा। नहीं तो विश्व परिवर्तन होना इम्पॉसिबल है। हमारा मोटो ही है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन है, प्रकृति को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, आत्माओं को परिवर्तन होना है। आज भी हम, अब टेस्ट कीजिए अपने आप को, आज भी हम जब मैं उच्चारण करते हैं, जैसे बोलते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो जब मैं बोलते हैं तो कौन सा वाला मैं याद आता है? अगर इस लेवल के मैं में है तो 1008 बार नहीं, 108,000 बार भी सोमान को रिपीट किया कुछ नहीं मिलेगा। और आत्मिक स्थिति के मैं में आने के बाद बस एक बार बोल दीजिए, काम हो गया, एक ही बार। क्योंकि आपको पता है, अभी बार बार ये रटना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि खुद को निश्चय नहीं कि मैं सच में मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बार बार याद क्यों दिलाना पड़ रहा है मैं आत्मा हूं, क्योंकि कॉन्शियसनेस निकल रहा है आत्मिक स्थिति से। आत्मिक स्थिति में आने के बाद हमारे सारे प्रॉब्लम्स लौकिक अलौकिक पारलौकिक अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरे बच्चे परमात्मा के बच्चे होकर मेहनत करें अच्छा नहीं लगता। आत्मिक स्थिति में आने के बाद अपने आप योग लग जाता है, योग लगाना नहीं पड़ता, ये मेहनत से परे स्थिति है। तो अगर हमें परिवर्तन होना है और विश्व को परिवर्तन करना है तो कुछ भी करके, मार पीट करके या प्यार से, इस स्थिति में आना ही पड़ेगा। कुछ भी करके, जब तक हम लेवल में हैं, जब तक हम लेवल में हैं, नाम का लेवल, पोस्ट पोजिशन का लेवल, शरीर का लेवल, किसी भी प्रकार का लेवल, जब तक हम लेवल में हैं, हम सबकी गिनती टेबल में है। टेबल पता है ना, पत्थर। जब तक लेवल उतारते नहीं तब तक टेबल जो है उससे अंदर जो डायमंड बैठा है वो निकलेगा नहीं। डायमंड देखिए, डायमंड एक पत्थर ही होता है, उसको जब अच्छे से डिजाइन देते हैं, उसको जो आकार देते हैं, तब जाके डायमंड बनता है। वो आकार मिला कब? मिला आत्मिक स्थिति में आने के बाद। जिस आत्मा ने अपने आप को लेवल रखा, लगा के रखा है, समझ लीजिए कितनी बड़ी भी आत्मा होने दीजिए, ज्ञानी तू, योगी तू, पवित्र, वो सिर्फ लेवल में है, क्योंकि लेवल नहीं उतारा है। आज भी देखिए यज्ञ में ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा, ब्रह्मा से भी ज्यादा कर्मणा और वाचा सेवा करने वाली आत्मा है आज यज्ञ में। लेकिन ब्रह्मा बाबा और ममा ने ऐसा क्या किया? कौन सी बात पकड़े कि नंबर वन चलेंगे। सिंपल बात है, आत्मिक स्थिति, और कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की, आत्मिक स्थिति। यहाँ आत्मिक स्थिति में सारी मेहनतें खत्म हो जाती हैं। जो हमारा पहला पाठ है, बच्चे तुम आत्मा हो, अगर हमने वही पक्का नहीं किया तो इम्पॉसिबल है, योग तो नहीं लगेगा, योग तो बहुत दूर की बात है। ये स्थिति कैसे होगी, जैसे कि हम कहते हैं कि हमें किताब लिखने वाले हैं, अभी तक हम आत्माओं ने एबीसीडी नहीं पढ़ी और हम कहेंगे कि हम किताब लिखने वाले। एबीसीडी यानी आत्मा का पाठ इतना पक्का करना चाहिए कि कोई भी आत्मा हमें जब पुकारती है तो नाम भी भूल जाए हमारा नाम क्या है। यहां तक आत्मिक स्थिति पक्की हो जानी चाहिए, नाम से भी परे जाना चाहिए, तब जाके परिवर्तन की महसूसता हमारे पास आएगी। बाकी कितने साल से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, धारणा कितनी होगी। ईश्वर की पहली श्रीमत है बच्चे तुम आत्मा हो। अगर हम सच्चे दिल से उसकी श्रीमत का पालन करते हैं तो पहली श्रीमत का पालन करनी चाहिए। पहली श्रीमत ही पालन नहीं की और कहेंगे और श्रीमत हम पालन करते जा रहे हैं, नहीं होगा। पवित्रता धारण नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी आत्मिक स्थिति में आने के बाद, क्योंकि आत्मिक स्थिति ऐसी स्थिति है कि वेस्ट और नेगेटिव खत्म हो जाता है। तो अभी के अव्यक्त मास के अनुसार और अभी जहां जहां क्लासेस चल रहे हैं, एक सिंपल सा अभ्यास है सभी के लिए कि हर घंटे में 108 बार अपने आप को याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूं, अपने अनादि स्वरूप को याद करना है 108 बार हर घंटे में, या फिर सारे दिन में 1008 बार, जैसे भी आपको सारे दिन, तब जाके परिवर्तन की महसूसता को हम चख पाएंगे, नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। देहाभिमान में रहना, जैसे कोमा पेशेंट होते हैं उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है आपका नाम ये है, आप यहाँ के रहने वाले हो, आपके पिता ये है, सेफ कंडीशन है। सभी आत्माएं अभी कोमा में हैं क्योंकि सही पहचान नहीं किसी को, तो सही पहचान में जब तक नहीं आते हैं तब तक जैसे कि हम परवश हैं, शरीर के वश हैं, कुछ नहीं हो सकता। अगर हम सच्चे दिल से चाहते हैं परिवर्तन होवे स्वयं में, पर बाबा को हम कुछ मदद करें परिवर्तन में, मदद तो नहीं कर सकते क्योंकि खुद की खुद मदद नहीं कर सकते, तो भगवान को क्या मदद करें, वही हमें मदद कर रहे हैं। फिर भी परिवर्तन की कड़ी में कुछ भी थोड़ा सा सहयोग हमसे हो गए, ये संकल्प है, तो आत्मिक स्थिति का पाठ पक्का करना पड़ेगा। कुछ दिनों की बात है, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करके आप पाएंगे कि आत्मिक स्थिति में क्या आनंद है, बहुत गहराई वाली स्थिति है। आप कभी है ना, सिर्फ और सिर्फ आप एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं, प्रैक्टिकली हो चुका है, आप ट्राई करके देख लीजिए। जो आत्मा अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 17 सेकंड के लिए आत्मा रियलाइज करती है, 17 सेकंड बोल रहे हैं हम आपको, ज्यादा नहीं, 17 सेकंड के लिए रियलाइज करती है, उस आत्मा की स्थिति अपने आप 20 घंटे के लिए बनी रहती है। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। अभी बहुतों को लगेगा 17 सेकंड तो बहुत मामूली बात है, 17 सेकंड तो बड़ी बात नहीं, हम तो घंटों तक योग करते हैं, 17 सेकंड क्या बड़ी बात है। लेकिन याद रखिए 17 सेकंड में 1700 मिली सेकंड है, और 1700 मिली सेकंड में एक भी मिली सेकंड के लिए अदर थॉट नहीं आना चाहिए, दूसरा संकल्प नहीं होना चाहिए एक भी मिली सेकंड के लिए। तो फिर वो 17 सेकंड की क्या पावर है रियलाइज करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट हमने एक श्रेष्ठ योगी से किया, उन्होंने बताया कि ये स्थिति ऐसी स्थिति है, उन्होंने अभ्यास करके दिखाया, उन्होंने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 13 सेकंड क्रॉस किए, सिर्फ 13 सेकंड। वो कहते हैं कि सस्टेन नहीं हो रही एनर्जी, जो एनर्जी आ रही है आत्मिक स्थिति में आने के बाद सही नहीं जा रही है, इतनी पावरफुल एनर्जी। तो 17 सेकंड में आपकी स्थिति 20 घंटे के लिए बन जाएगी, आप ट्राई करके देख लीजिए। तो 17 सेकंड 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 के लिए हमें करना है। बहुत बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं हम आत्मा है। योग का पहला पाठ ही है बच्चे अपने आप को आत्मा समझ के मुझे याद करो। अभी बाबा यहाँ दो स्टेटमेंट कहता है, बाबा कहते हैं ये सब राज हो गया, दूसरी तरफ कहते हैं अपने आप को आत्मा समझ के मुझे याद करना मासिका करनी।
अभी कहने वाला एक स्टेटमेंट दो, ये कैसे सही हो सकता है, इसको कैसे गाली करें फिर? इसका कारण ही यही है, सहज उनके लिए है जिन्होंने एक पार्ट पक्का किया है आत्मा का, और मासी का घर उनके लिए नहीं है जिन्होंने ये पार्ट पक्का नहीं किया है। तो आत्मा समझना और उसका रियलाइज करना, इसके सिवा योग नहीं शुरू होता। फिर आप योग की टेस्ट ऐसी कर पाएंगे कि आप योग से उठ नहीं पाएंगे, जबरदस्ती कोई उठाने भी चाहे आपको फिर भी उठ नहीं पाएंगे। आत्मिक स्थिति ऐसी स्थिति है कि जिसमें आने के बाद हम इस संसार से परे हो जाते हैं कंप्लीट। तो इसी प्रकार योग में भी ये धारणा होनी चाहिए। अभी आप अपने आप को चेक कीजिए, हम किसी के लिए नहीं कह रहे, हमारे परिवार का डिस्कशन है, अपने आप को खुद को चेक कीजिए। जब भी हम योग करते हैं, बाबा की श्रीमत है कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझ के मुझे याद करो। तो आप चेक कीजिए, जहां भी हम बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, मधुबन में बैठते हैं, अपने घर में बैठते हैं, जहां कहा भी जाए हम योग के लिए बैठ जाते हैं, तो क्या होता है हम जरा डिस्कस करेंगे। अध्ययन के बाद, अपने सभी ब्राह्मणों का अध्ययन करने के बाद ये पता चला है कि 99% आत्मा है। जब बाबा को याद करने के लिए कहां भी बैठती है, क्लास में, मधुबन में, घर में, जहां कहां भी बैठती है, 99% आत्माएं सिर्फ फोटो को देखती रहती है। अब चेक कीजिए, हम किसी को नहीं बोल रहे, सिर्फ फोटो को देखती रहती है। इस फोटो को नहीं देखना है, ये रथ है मेरे पिता का, इसमें मेरे दो पिता बैठे हैं, एक अलौकिक, दूसरा पारलौकिक। उस पारलौकिक पिता को याद करना है, तब जाके योग होगा। फोटो को देखकर योग नहीं होगा, कभी भी योग नहीं हो सकता, ये भक्ति होगी। बहुत से आत्माओं के अनुभव है कि क्लास में बैठने के बाद, मधुबन में बैठने के बाद फोटो के सामने बहुत अच्छा लगता है, सुकून महसूस होता है, शांति मिलती है, आनंद आता है, प्रेम महसूस होता है। आज भी मंदिर में जाइए, देवी देवताओं के सामने ये सारी चीजें मिलेगी, लेकिन विकर्म विनाश नहीं होंगे। कुछ भी हो जाए, कितने घंटे बैठे, इसका कोई फायदा नहीं। किस क्वालिटी से योग किया उसका ही अनुभव है हमारे पास। तो फोटो को देखकर कुछ नहीं होगा, और इनको देखकर कोई क्यों सुकून आता है, नेक्स्ट टू गॉड सो जाए। अगर किसी और देवी देवताओं की मूर्ति को देखकर इतना सुकून मिलता है तो क्यों नहीं इनको देखकर मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट टू गॉड सोल है, नंबर वन सोल है। तो फोटो को नहीं देखना है, भ्रुकुटी में मेरा पिता बैठा है, पॉइंट ऑफ लाइट, उसे याद करना है। बहुत बारी फोटो के ऊपर लेजर लाइट लगी हुई होती, हम सिर्फ बल्ब को देखते रहते हैं। बल्ब को देखने से कुछ नहीं होगा, बल्ब मेरे पिता का सिंबल है, ये पॉइंट ऑफ लाइट जो बल्ब है ये मेरे पिता का सिंबल है, मेरा पिता इस पॉइंट ऑफ लाइट के जैसा है, उसे याद करना है, न कि बल्ब को देखना है। बल्ब को देखने से न यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, न कुछ और होगा, कुछ नहीं हो सकता। विकल्प विनाश कभी नहीं होंगे, बहुत अच्छे वायुमंडल में हम बैठे हैं, इसलिए हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, यहां से उतर गए जैसे थे हो सकते हैं, इसका मतलब योग नहीं हुआ। जिस आत्मा का योग होता है, बहुतों को अनुभव होगा, मुख से शब्द नहीं निकलते, मुख बंद हो जाता है, शब्द उच्चारने की हिम्मत नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती, संकल्प ही नहीं होते। कोई कर्म करने जाते हैं तो वो एक अलग रूहानियत आ जाती है। तो योग को हम किस प्रकार से लेके जा रहे हैं? अगर कोई भी आत्मा, फिर से वही एक्सपेरिमेंट, 17 सेकंड के लिए बाबा को याद करे आत्मा समझ के, परिवर्तन निश्चित है, 100% परिवर्तन है। आप करके देख लीजिए 17 सेकंड। और बहुत बार क्या होता है, जब हम क्लास में बैठते हैं, कहां भी बैठते हैं, अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को याद करना शुरू किया, तो थोड़े समय में क्या होता है, खुद को भूल जाते हैं, बाबा याद रहते हैं थोड़े समय में, फिर अचानक से खुद की याद आती है, बाबा भूल जाता है। और कभी कभी इतना अच्छा योग लगता है कि दोनों को भूल जाते हैं, दोनों कहाँ है पता नहीं, मैं कहाँ हूँ, बाबा कहाँ है। तो आप चेक कीजिए, ये ऑर्डर जो बाहर वाले जो आध्यात्मिक सिखा रहे, जो भी संस्था है, उनके जैसा हमारा ज्ञान नहीं है। ये आया, मुरली सुनी, घर चल दिए, जैसे करना था योग किया, कुछ नहीं मिलेगा इससे, प्राप्ति कुछ नहीं होगी, बस चक्कर लगाते रहेंगे सेंटर, परिवर्तन जीरो, सुकून शांति मिलेगी
वो लेके जाएंगे परिवार में, थोड़ी बांटेंगे, अच्छा लगेगा, टेम्पररी, अंदर कुछ नहीं होगा। अगर अंदर कुछ करना चाहते हैं परिवर्तन, तो सही तरीके से जाना पड़ेगा, आत्मा समझ के ही बाबा को याद करना पड़ेगा। साकार मूल्यों में बहुत बार सुना है, कोई कोई बच्चे बाबा को कहते थे बाबा मेरा 8 घंटा योग होता है, बाबा कहते थे मेरा ही नहीं होता तो तेरा कैसे होगा। लॉजिक है, क्योंकि बाबा इतना अभ्यास करते थे आत्मा का, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, सुना है हमने क्या, दीवारों पर लिखा, नोटबुक भरी, सबको पूछते थे आप आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। देखिए नंबर वन सोल को इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ी तो हमारी क्या हालत है, हमें कितनी करनी पड़ेगी, तब जाके परिवर्तन होगा। और आत्मिक स्थिति में स्वयं परिवर्तन नुंडा हुआ है, अपने आप है, तो कुछ भी हो जाए अभी हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, समय अंत के भी अंत में आकर पहुंचा है। अगर अभी हम एक्सक्यूज देते हैं तो आने वाले समय में बाबा हमें एक्सक्यूज देगा। तो अभी एक्सक्यूज देना मतलब आपकी अंत की एक्सक्यूज लेने के लिए तैयार रहना बाबा से। तो अभी कुछ भी हो जाए आत्मिक स्थिति का गहरा अभ्यास करना ही पड़ेगा, तब जाके परिवर्तन होगा। सच में बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, आत्मा तो कितनी छोटी है उसे रियलाइज करना। क्योंकि अभी तक जो मैं है वो मैं कौन सा रहा है आप चेक कीजिए। उस मैं में दो प्रकार के मैं होते हैं, मैं जब हम उच्चारण करते हैं ना तो देख लीजिए प्रोनाउंसिएशन, एक मैं उच्चारण करते हैं उसके ऊपर अनुस्वार जो होता है पॉइंट, उसका उच्चारण कभी कभी नहीं होता, सिर्फ मैं बोलते हैं। तो जो मैं है ना वो देहाभिमान का है, अनुस्वार नहीं है ना वो देहाभिमान का मैं है, और जिसके ऊपर अनुस्वार रहता है मैं, तो अंदर से मैं निकलता है वो आत्मा का मैं, और गहराई है हमारे शब्दों में। तो आप चेक कीजिए जब भी आप मैं उच्चारण करते हैं तो आप कौन से कॉन्शियसनेस में, अगर बॉडी की कॉन्शियसनेस में मैं को उच्चारण किया तो वहां से पाप कर्म ही होगा, क्योंकि प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, कलयुग की प्रकृति है, उसका स्वाभाविक गुण है पाप कर्म। तो आत्मा का स्वाभाविक गुण जो है उसमें आना पड़ेगा। तो पहली प्रैक्टिस है आत्मिक स्थिति की, अभी एक्सक्यूज न देते हुए हमें करनी पड़ेगी, डेफिनेटली परिवर्तन होगा, ट्राई करके देख लीजिए आप, जीवन ऐसे परिवर्तन होगा जो आज तक नहीं हुआ है, यहाँ ही हम अड़े हुए हैं, हम कहते हैं परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में अभी तक दुख है, हमारे जीवन में दुखों का कारण एक ही है देहाभिमान। जब तक देहाभिमान नहीं छूटता अहंकार नहीं जाएगा, और जब तक अहंकार नहीं जाएगा तब तक दुख से नहीं छूटेगा। छोटे बच्चे को हम देखते हैं उसको कभी अहंकार नहीं होता, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मेरा अस्तित्व क्या है, बस वो खेलता रहता है, मौज में मौज बनाता रहता है। अभी क्या हो गया, बड़े होने के बाद शरीर का अभिमान बहुत बढ़ता गया, तो इसको निकालना पड़ेगा कैसे भी करके। अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक शब्द उच्चारण करते हैं, आप में से कुछ आत्माएं बताएं कि आपको क्या दिखा। बाबा स्टॉप, क्या दिखा,
बिंदु,
बिंदु और परमधाम। और जैसे ही जिस चीज का नाम लेते हैं उसका सत्य स्वरूप याद आना चाहिए। अब देखिए जिस चीज का नाम लिया, जैसे बोला अर्पण तो तुरंत अर्पण नजर आना चाहिए, तो वैसे बाबा बोलते वक्त पॉइंट ऑफ लाइट याद आना चाहिए और पिता की महसूसता होनी चाहिए, तब कहेंगे कि सच में बाबा यहाँ पक्का हो चुका है। मैं बोलते ही वो बिंदी याद आनी चाहिए, आप उस बिंदी में आके किसी से कन्वर्सेशन कीजिए, किसी से कम्युनिकेशन कीजिए, क्या होता है आप देख लीजिए। अगर किसी एक किसी भी एक सेंटर में, ये भी स्टडी में कंप्लीट हो चुका है, अध्ययन में हो चुका है, किसी भी एक सेंटर में सिर्फ 3 आत्माएं अगर आत्मिक स्थिति में आती है तो पूरा सेंटर अपने आप आत्मिक स्थिति में आ जाएगा। अब करके देख लीजिए, ट्राई करके देख लीजिए सभी। हम अभी भी कहते हैं कि हम कहते हैं गुड़ मीठा है, आप खा के देख लीजिए कैसा है, आपको आपकी टेस्ट आपको पता चलेगी। सिर्फ 3 आत्माएं अगर एक सेंटर में पूरी आत्मिक स्थिति में आ जाती हैं तो सभी की आत्माएं अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि जो वायुमंडल बनता है आत्मिक स्थिति में आने के बाद, एक भी आत्मा तो पूरा वायुमंडल सभी को खींच लेता है, सभी को मजबूर करता है आत्मिक स्थिति में आने के लिए, पूरा मजबूर करता है। तो ये धारणा हम सब आत्माओं को पक्की करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सभी का संकल्प है विश्व परिवर्तन का। तो ये धारणा कुछ भी कर ले आत्मिक स्थिति पक्की करनी ही पड़ेगी, चाहे प्यार से कीजिए या मान से कीजिए, लेकिन करना तो पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अभी दूसरी बात है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम थोड़े साल पीछे चले जाते हैं, 5 साल पीछे, 10 साल पीछे, 15 साल पीछे, 20 साल पीछे, तो वहां का जो अन्न था, बहुत सी अनुभवी आत्माएं बैठी हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल पीछे का जो अन्न था उसकी क्वालिटी क्या थी आप सभी को पता है। भोजन मतलब अन्न इतना शुद्ध था कि दवाइयां ज्यादा नहीं लेनी पड़ती थी, अन्न में ही क्वालिटी इतनी थी कि दवाइयों की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो अन्न से ही कभी ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाए तो ही दवाइयां लेते थे, अन्न से ही शरीर ठीक रहता था। लेकिन अभी का अन्न बहुत कमजोर हो चुका है। उसी प्रकार 5 साल पहले, 10 साल पहले एक बार भी मुरली सुनते थे तो दिन भर नाचते रहते, इतनी ताकत रहती थी। एक बार मुरली हर दिन भर में उड़ते रहते थे, इतनी ताकत रहती थी, क्योंकि वहां का वायुमंडल, 5 साल पहले जो वायुमंडल था वो इतना तमो प्रधान नहीं था। इसके कारण एक बार जो मुरली सुनी वो पूरी अंदर उतर जाती थी और इतना आनंद लेती थी कि लगता था कि पाना था सो पा लिया। दिन भर में नाचते रहते थे, उड़ते रहते। लेकिन अभी देख लीजिए, तो अभी के समय अनुसार अभी जो वायुमंडल बना है उसकी स्टडी करने के बाद यह अनुमान निकला है कि अभी के वायुमंडल के अनुसार आपको दिन में कम से कम 5 बार मुरली पढ़ना या सुनना पड़ेगा, तब जाके आपकी स्थिति बनेगी। ये भी स्टडी करके चेक किया है, जो आत्मा 3 बार ही मुरली कंप्लीट करती है उसकी स्थिति 25% स्टेबल और 75% डामाडोल रहती है, हिलती रहती है। जो आत्मा 4 बार ही मुरली करती है उसकी स्थिति 75% स्टेबल और 25% हिलती रहती है, और जो 5 बार करेगी कंप्लीट स्टेबल, आपको कोई परिस्थिति हिला नहीं पाएगी। आप ट्राई करके देख लीजिए, अभी का वायुमंडल ऐसे बना है कुछ भी हो जाए 5 बार करनी ही पड़ेगी। और ये भी स्टडी हुआ है इसके साथ आगे चल के जो वायुमंडल बनने वाला है उसके लिए कम से कम 9 बार करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी स्थिति बनी रहेगी। एक मुरली के वरदान में आपने सुना होगा कि आप शांत रहने की चाहना भी रखो, फिर भी वायुमंडल ऐसा होगा कि आपको शांति में बैठने नहीं देगा, इतना अशांत होगा। तो अभी कम से कम 5 बार है तो कर तो दे। मुरली से होता क्या है, वेस्ट और निगेटिव पूरा खत्म हो जाता है। मुरली आत्मा का भोजन है, आत्मा के अंदर शुद्ध भोजन जाने के बाद पूरा वेस्ट और निगेटिव खत्म हो जाता है। मुरली ऐसे ही नहीं है, मुरली बहुत ताकत देती है, बहुत यानी जिसकी तुलना नहीं कर सकते किसी भी चीज से। हर अक्षर की एक ताकत होती है, हर अक्षर की ताकत होती है। आपने अगर ये ज्ञान थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो अ से लेकर ज्ञ तक, ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर हैं, हर एक लेटर की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, एक एनर्जी है हर एक लेटर की। इसलिए साधु महात्मा में ऋषि मुनियों ने जो मंत्र बनाए हैं अभी तक वर्क कर रहे हैं। मंत्र और कुछ नहीं, उन अक्षरों को लिया है, उनकी रचना की है, उनको उच्चारण करने के बाद एक ऊर्जा निकलती है, उन शब्दों को उच्चारण करने के बाद एक ऊर्जा निकलती है, जिस ऊर्जा को बार बार निकालने से एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है उन मंत्रों से, अलग अलग मंत्रों से। उसी प्रकार हर अक्षर की एक ताकत है, हर शब्द की एक ताकत है। तो आपको एक शब्द सुना रहे, एक वाक्य सुना रहे, अगर किसी कॉमन इंसान ने कहा बाहर वाले कि जा तू सुखी रहेगा तेरा कल्याण होगा, यही शब्द एक साधु ने कहा कि जा तू सुखी रहेगा तेरा कल्याण होगा, यही शब्द किसी महात्मा ने कहा कि जा तू सुखी रहेगा तेरा कल्याण होगा, यही शब्द हमारे दादियों ने कहा कि जा तू सुखी रहेगा तेरा कल्याण होगा, यही शब्द मम्मा बाबा ने कहा कि जा तू सुखी रहेगा तेरा कल्याण होगा, और फाइनली यही शब्द शिव बाबा ने कहा कि जा तू सुखी रहेगा तेरा कल्याण होगा। एनर्जी कहाँ है, पावर लास्ट में है, शब्द एक ही है, उच्चारने वाले अलग अलग है, तो पावर कहाँ आती है, जो उच्चारण करता है उसकी कॉन्शियसनेस की ऊर्जा उस शब्दों में भरी रहती है। शब्द एक ही है
लेकर से एक ही है, लेकिन जो उच्चारण करता है उसकी ताकत वहां रहती है। इसलिए कहते हैं ना कि बाहर वाला कोई भी मंत्र कोई भी किसी को नहीं दे सकता। जब वो गुरु पर्टिकुलर गुरु उसको देता है तो उसको वो सिद्धि मिलती है। वो मंत्र तो कॉमन बाजार में भी मिलते हैं, अगर किसी आत्मा ने किसी को दे दिया सिद्धि नहीं मिलेगी। तो ताकत किसकी काम कर रही है? जिसने दिया उसकी ताकत काम कर रही है। तो आज हम जो अक्षरों का समुच्चय कहेंगे, जो सुन रहे हैं रोज मुरली, वो किसके माँ बाप के हैं? स्वयं परमात्मा के, बाबा के। तो सोचिए कि उसकी ताकत कितनी भरी हुई है एक एक शब्द में। आज भी हम सभी आत्मा है, अगर नेशनल एंथम शुरू है, राष्ट्र का गीत नेशनल एंथम अगर शुरू है, तो कितना रिस्पेक्ट से उसे सुनते हैं, रिगार्ड से खड़े रहते हैं नेशनल एंथम को, कितना रिगार्ड देते हैं, बहुत रिगार्ड देते हैं ना। अगर कोई वहां कुछ कर रहा है, मोबाइल पर बात कर रहा है, कुछ हरकतें कर रहा है, तो हम उसे डांटते हैं कि अरे आपको समझ में नहीं आता, नेशनल एंथम चल रही है और आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो आप सोचिए, नेशनल एंथम का इतना रिगार्ड है, तो जो ग्लोबल एंथम है, यूनिवर्सल एंथम है, जो भगवान स्वयं रोज हमारे लिए चलाता है, उसका रिगार्ड कितना होना चाहिए? आप ही सोचिए, नेशनल एंथम को इतना रिगार्ड, तो मुरली को कितना रिगार्ड होना चाहिए? मुरली तो ग्लोबल एंथम है, जिससे सभी आत्माओं को परिवर्तन शक्ति मिलेगी, सभी आत्माएं परिवर्तन हो जाए, तो उसको कितना रिगार्ड देना चाहिए? फिर भी हम कहते हैं चलो अपना ही बाबा है, चलता है। कोई प्रेसिडेंट यहां आ जाता है तो जैसे भी बैठे हैं, जैसे खड़े हैं, कोई हिलेगा नहीं। हिलेगा तो डिसरिगार्ड लगेगा ना प्रेसिडेंट का। अगर कोई आसपास कुछ करने जाता, कोई निकलेगा नहीं, सभी खड़े के खड़े रहेंगे, बैठे के बैठे रहेंगे। तो सोचिए, वो डायमंड हार्ट में जब आता है तो हम कैसे रहते हैं? चलता है, अपना ही बाबा है, कुछ भी करें। देखिए उसको कितना रिगार्ड देना चाहिए, आप सोचिए। हम औरों को इतना रिगार्ड दे रहे हैं, और जो अपना पिता है जिसने हमारा उद्धार किया है और कर भी रहा है, उसको कितना रिगार्ड देना चाहिए? मुरली को कितना रिगार्ड देना चाहिए? आप ही सोचिए। अगर कोई भी आत्मा मुरली बहुत रिगार्ड से सुनती है, मुरली आप एक मास के लिए ये अनुभव करके देख लीजिए, जो मुरली आप पढ़ रहे उस एक एक शब्द पर अगर आपका पूरा अटेंशन है, आप पढ़ भी रहे और सुन भी रहे उसी समय में, सिर्फ एक मास के लिए कीजिए, एक बार दिन में, वो वैसे पांच बार तो करनी है, वो भी ऐसे कम से कम उस पांच में से एक जो पढ़ेंगे वो इतनी अच्छे से पढ़ेंगे कि हर शब्द के ऊपर अटेंशन रहेगा आपका, जो पढ़ रहे वही सुनेंगे, सिर्फ एक मास के लिए, देखिए परिवर्तन क्या होता है। आप ट्राई करके देख लीजिए, और मुरली को जितना रिगार्ड देंगे उतने बाबा के प्यारे बनेंगे। बाबा हमेशा कहते हैं कि मुझे से कितना प्यार है ये मुरली से निकलता है। अगर मुरलीधर से प्यार है, मुरली से प्यार है, तो ही मुरलीधर से प्यार है, नहीं तो कितना कहो मुरलीधर से प्यार है हो नहीं सकता। तो एक दिन में पांच बार मुरली करके देखिए होता क्या है, सभी एक्सपेरिमेंट है। अभी बहुत सी आत्माएं कहेंगी कि हमारे बिजनेस है, पढ़ाई है, नौकरी है, इसमें पांच बार एक बार मुश्किल से होती है, और आप कहते पांच बार करो, कैसे करेंगे? आपको समय भी निकाल के देते हैं, आपके पास समय है। अभी वेबसाइट पे अपनी बाबा की, सबके पास स्मार्टफोन है, वेबसाइट पर मुरली तो मिलती है, MP3 में 15 से 20 मिनट में मुरली पूरी हो जाती है। स्नान करने के लिए 15 मिनट लगते हैं, बाथरूम में मुरली लगा दीजिए, हो गई मुरली आपकी। नाश्ता करने के लिए 15 मिनट लगते हैं, हो गई मुरली। लंच के लिए 15 मिनट लगते हैं, हो गई मुरली। शाम की चाय, रात का डिनर 15 मिनट 20 मिनट, हो गई मुरली। कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता। फिर से कहते आप जहां भी जॉब पर जा रहे हैं, ट्रेवल में जा रहे हैं, बाहर क्या देखना है सीनरी, बाबा को याद कीजिए मुरली सुनते हुए, हो जाएगी मुरली पांच बार। समय है, हर किसी के पास समय है, बस हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। जब जान पर आती है तब सब इम्पोर्टेंस दे देते हैं, तब तक कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, तब तक चिल्लाते रहते हैं। अब सभी को तो ये पता होगा कि हर आत्मा के जीवन में पांच युग आते हैं, संगम युग में पांच युग आते हैं, पांचों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। संगम में ही जैसे जन्म गया ऐसे आते, आपको बताते हैं, जैसे आपका कोर्स हो गया कितना उमंग गुस्सा होता है, मुरली को बहुत प्यार से आएंगे, सब बहुत प्यार से योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, कुछ दिनों कुछ दिन कुछ मास और कुछ मास कुछ साल चलेगा। यह है आपका सतयुग। उसके बाद थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, कभी जाएंगे कभी आएंगे, दो कला कम होगी, वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, कहीं भी चलता है। फिर वो होने के बाद द्वापर में आते हैं, फिर कभी हफ्ते में एक बार आएंगे, देखेंगे। और कलयुग में ऐसा होता है कभी एक साथ छह महीने में कभी आए तो आए, फिर ऐसी चोट लगती है कि सिर ठिकाने पर आ जाता है, नहीं संगम में आना है, फिर संगम पर आ जाते हैं, फिर बाबा को नहीं छोड़ेंगे। ये सारे युग हमारे जीवन में आते हैं, सारे स्टेजेस हमारे जीवन में आते हैं, बस आप ही सोचिए किस प्रकार से चलना है। तो ये जो धारणा है पांच बार मुरली की, अब करके देख लीजिए परिवर्तन कैसे हो रहा है। आज बहुत सी आत्माओं के फोन कॉल्स आ रहे हैं, कहते कि अभी तक जो नहीं हुआ है हमारे जीवन में ये मुरली ने करा दिया पांच बार की, अब बस करके देख लीजिए, समय है आपके पास, कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता। फिर से कहते हैं आपका एक्सक्यूज फिर बाबा का एक्सक्यूज। तो ये एक धारणा सबसे ऊंची है। इसके बाद दूसरी धारणा है जैसे कि पांच स्वरूप की जिन बहुत बारी हमने सुनी है, बाबा ने तो बहुत सालों से कही है, शुरू से बाबा कहता आ रहा है कि आपके स्वरूप को याद करो, उसमें बहुत ताकत है। पांच बार जब मुरली सुनते हैं तो वेस्ट और नेगेटिव पूरा खत्म हो जाता है, और जब ड्रिल करते हैं तो एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। अब करके देख लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन पावर हाई हो जाती है। पांच मिनट की ड्रिल है, चलो कोई कोई कहते हैं कि पांच मिनट आठ बार करना है, 40 मिनट हो गए, इतने मिनट नहीं है हमारे पास। उनको कहते हैं एक मिनट के लिए तो कर सकते हैं, एक मिनट की भी ड्रिल है, तो कहते कि एक मिनट भी ज्यादा हो रहा है, थोड़े से कुछ कम कीजिए, एक मिनट थोड़ा ज्यादा लग रहा है। फिर उनको कहते 17 सेकंड के लिए तो कर सकते हैं, 17 सेकंड की भी ड्रिल बनाए। तो कोई कोई इतने अच्छी योग्य आत्मा है कहते 17 सेकंड भी थोड़े ज्यादा होते हैं, कुछ कम कीजिए, बहुत अच्छी आत्मा है। तो उनको कहते 5 सेकंड तो है आपके पास, सिर्फ 5 सेकंड, अनादि आदि उच्च ब्राह्मण फरिश्ता हो गए, 5 सेकंड का काम है, लेकिन करना है। ज्ञान को बहुत सहजता से उठाना है, एक मतलब फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है, थोड़ा सा कीजिए लेकिन सच्चे दिल से कीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब फॉर्मेलिटीज करते हैं तो आधा ध्यान बाहर आधा ध्यान इधर होता है, न वो ठीक हो रहा है न ये ठीक हो रहा है, पूरा वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए कुछ सेकेंड ही कीजिए, योग सेकेंड की बात है, पूरे सेकेंड की बात है। अगर कोई भी आत्मा आत्मिक स्थिति में, पक्का आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा को याद करें, आत्मिक स्थिति में रहकर, 1 घंटा योग करना भी मुश्किल है, आप एनर्जी को सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, सहन ही नहीं कर पाएंगे, इतनी ऊर्जा आपकी ओर आएगी। 1 घंटा पूरा आत्मिक स्थिति में बाबा को याद करना, करके देख लीजिए। 1 घंटे में जब भी हम योग करने बैठते हैं 10 मिनट 5 मिनट, तो ज्यादातर समय कहाँ होता है आप चेक कीजिए, आप खुद को चेक कीजिए। बहुत बार देखा गया है, मतलब बुरा मत मानिए, बुरा लगेगा तो पहले से सॉरी बोलते आपको, कि बहुत बार आधा समय नींद में चला जाता है, जो समय बचता है उसमें से भी कहां मन होता है कहां बुद्धि होती है पता नहीं रहता, तो योग नहीं हो रहा है, बल्कि हम अपने आप को ठगा रहे हैं, ठगी कर रहे हैं अपने आप से, खुद से ठगी कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, खुद का समय भी बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ा सा कीजिए, घंटों की बात नहीं है, मिनटों की और सेकंड की बात है। बाबा ऐसे नहीं कहता कि सेकंड में मुक्ति जीवन होती है, इसमें राज है, तो सेकंड के लिए कीजिए लेकिन क्वालिटी वाला कीजिए, फिर परिवर्तन देखिए कैसे होता है। वाचा बदलने नहीं पड़ेगी, दृष्टि बदलने नहीं पड़ेगी, कर्म बदलने नहीं पड़ेंगे, अपने आप बदल जाएंगे, ना चाहते हुए भी बदल जाएंगे अपने आप, इस प्रकार से अगर योग किया जाए। इसलिए प्राचीन राजयोग का गायन बाबा ने ऐसे ही नहीं किया हुआ, बहुत शक्ति है इसमें, इतनी शक्ति है कि आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम समाप्त कर सकता है, इतनी शक्ति है। तो ये जो धारणा जैसे कि 5 स्वरूप के चिन्ह 8 बार कैसे भी करके करनी है। अभी आप वेस्ट और नेगेटिव खत्म हो गया मुरली से, या एकाग्रता बढ़ गई आपकी ड्रिल्स है, तो योग बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो अपनी स्थिति की प्रैक्टिस की है, तीनों आ गए तो आप देखिए आपकी स्थिति कितनी शक्तिशाली बनेगी। आत्मिक स्थिति 5 बार ड्रिल, 5 बार मुरली और 8 बार ड्रिल, तो स्थिति कैसी बनेगी आपकी, चेक कीजिए कितनी शक्तिशाली बनेगी। मतलब आपके सामने किसी को ठहरना भी मुश्किल होगा, इतनी पावरफुल एनर्जी होगी आपके अंदर, बहुत मुश्किल से आत्माएं आपके आसपास ठहर पाएंगी, क्योंकि जिस आत्मा की जैसी एनर्जी होती है उसी प्रकार की आत्माएं उसके आसपास रहती हैं। अगर एनर्जी हाई है तो सिर्फ हाई एनर्जी वाली आत्मा आपके आसपास सस्टेन कर पाएंगी, लो एनर्जी वाली आत्माएं साइड से निकल जाएंगी, आपके आसपास भी नहीं आएंगी। आप ट्राई करके देख लीजिए, सारा एनर्जी का खेल है, सारा एनर्जी का अंदर का। तो ये ड्रिल कैसे भी करके करनी ही है परिवर्तन चाहते। इसके बाद और एक धारणा है, ये धारणा अगर हम बच्चों में हैं तो हमें कहने का अधिकार है कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, नहीं तो हम नहीं कह सकते कि हम भगवान के ईश्वर के बच्चे हैं। धारणा ही ऐसी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। हमें जब भी लौकिक में कोई कार्य करने होते हैं, सपोज हमें दरवाजे का ताला खोलना है, अगर ताला खुल नहीं रहा है तो हम जोर लगाते हैं, जोर से चाबी को घुमाते हैं, किसी चीज को सख्त चीज को काटना है, चीज कट नहीं रही तो हम फिर वहां जोर लगाते हैं, जोर से काटने का प्रयास करते हैं। और अगर और बात, एक नारियल तोड़ना है, नारियल टूट नहीं रहा है तो जोर से उसको पटकते हैं, जोर लगाते हैं। तीनों बातों में हमने जोर लगाया, बल लगाया। लेकिन आप चेक कीजिए, जब ताला खोल रहे थे, किसी चीज को काट रहे थे, नारियल को तोड़ रहे थे जोर से, तो हम क्रोध स्वरूप थे या स्नेह स्वरूप थे? सूक्ष्म में चेक कीजिए, स्थिति कौन से थी? सूक्ष्मता है, ज्ञान की सूक्ष्मता है, ज्ञान ऊपरी ऊपरी बातों में नहीं है। बाबा कहते हैं समुद्र में तो हम कूद गए लेकिन तले में जाना है तब जाके मोती मिलेंगे, ऊपर तो मछलियां मिलेंगी, धंधा होगा मछलियों से, बेचेंगे अच्छा पैसा मिलेगा, मतलब ऊपर से ही दिखेगा सब कुछ, अंदर कुछ नहीं होगा। तो सोचिए, हर कर्म करते समय आप स्नेह स्वरूप थे या क्रोध स्वरूप थे? अगर हम रावण स्वरूप थे तो हमने विकर्म किया, हर कहां भी कर रहे हैं, मधुबन में कर रहे हैं, सेंटर में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, जॉब पर कर रहे हैं, लेकिन क्या किया? विकर्म किया। क्योंकि एनर्जी कौन सी निकली हमसे? एनर्जी जो निकली वो निगेटिव निकली। पाप की सिंपल डेफिनेशन है, पाप किसे कहा जाता है? आपसे जो ऊर्जा निकलती है वो अगर आपका भी और औरों का भी नुकसान करती है तो उसे पाप कहा जाता है। आपसे जो एनर्जी जो ऊर्जा निकलती है वो अगर आपका भी और औरों का भी नुकसान करती है तो उसे पाप कहा जाता है। पाप ऊपरी तौर पर होते हैं उसे छोड़ दीजिए, पाप सबसे ज्यादा आंतरिक तौर पर होते हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कर्म बदले, कर्म तभी बदलेंगे जब संकल्प बदलेंगे, अंदर की ऊर्जा बदलेंगे। तो हर कर्म करते हुए हमें चेक करना चाहिए कि हम कौन से कॉन्शियसनेस में, स्नेह या क्रोध। बहुत बार कोई कार्य होता नहीं तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो चिड़चिड़ापन आना मतलब खुद का भी और औरों का भी नुकसान करना। हम उस ताले को नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं, नारियल को नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं, जिस चीज को काट रहे हैं उसको निगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं, क्रोध स्वरूप है ना, तो ऊर्जा वो निकल रही है, तो हम पाप कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं। बहुतों को अगर आपने से पता होगा कि हमारे अकाउंट सिर्फ आत्माओं के साथ ही नहीं प्रकृति के साथ भी है, बहुत कड़े अकाउंट है। ताला पृथ्वी तत्व का बना हुआ है तो हमने पृथ्वी तत्व को निगेटिव ऊर्जा दी, नारियल में पृथ्वी तत्व भी है जल तत्व भी है तो दोनों को निगेटिव ऊर्जा दी, तो तत्वों से भी हमारे कड़े अकाउंट है। अगर इन तत्वों को हमसे निगेटिव ऊर्जा जाती है तो हमारा अकाउंट बनता है। इसमें सिंपल आपको बताता है, जिस आत्मा का पृथ्वी तत्व से कड़ा अकाउंट है उस आत्मा को अर्थक्वेक में शरीर छोड़ना पड़ेगा, जिसका जल तत्व से उसको डूब कर शरीर छोड़ना पड़ेगा, जिसका अग्नि तत्व से उसको जल कर शरीर छोड़ना पड़ेगा। नो एक्सक्यूज, ये रूल है, ये लॉ है, कोई चेंज नहीं कर सकता। हम जो दे रहे हैं वो तत्व हमें लौटा रहे हैं सोच समय। हम अभी भी जहां भी बैठते हैं बहुत ध्यान पूर्वक चलना पड़ेगा, ये साधारण ज्ञान नहीं है बाबा का, सेकंड सेकंड अनमोल है। बाबा कहते हैं ना संगम का एक सेकंड एक साल के बराबर है, क्योंकि आपसे उतनी ऊर्जा निकलती है जो 2500 साल में कभी नहीं निकली है द्वापर से कलयुग में। संगम में जब ब्राह्मण बनते हैं तो आपके हर कर्म हर संकल्प हर बोल की जो ऊर्जा निकलती है सबसे शक्तिशाली। तो हर कर्म के लिए, संकल्प के लिए, बोल के लिए चेक कीजिए इंटेंशन क्या है। इंटेंशन यानी भाव, भाव से ही ऊर्जा निकलती है। जब तक इंटेंशन नहीं बदलता तब तक हम लाख गए किसी को या आपके प्रति हमें स्नेह है, स्नेह की ऊर्जा ही फील कराती कि स्नेह है, बोलने की आवश्यकता नहीं लगती वहां पर। तो इस प्रकार हर कर्म करते समय हमें चेक करना है कौन से कॉन्शियसनेस में है। सिंपल बात है, अगर रास्ते से कोई आदमी जा रहा है, कोई आत्मा जा रही, ड्रामानुसार जिसका पार्ट, शब्द ठीक से सुनिए, ड्रामानुसार जिसका पार्ट भिखारी का है, आत्मा भिखारी नहीं है, आत्मा उसकी संतान है, हर आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, रिचेस्ट है, कोई आत्मा यहाँ भिखारी नहीं, सभी इक्वल है। तो उस आत्मा के पार्ट को देखकर उसे भिखारी कहना गलत इंटेंशन से भी पाप है। पत्थर पत्थर ही है, लेकिन गलत इंटेंशन से उसे पत्थर कहना पाप है। गधा जो जानवर है वो गधा है जानवर के रूप में, लेकिन गलत भाव से उसे गधा कहना पाप है, क्योंकि आप निगेटिव ऊर्जा दे रहे हो उसको, कह रहे हैं गधा लेकिन ऊर्जा दे रहे हैं नेगेटिव। तो ये सूक्ष्मता है, अनकॉन्शियसली हमारे अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं। कॉन्शियसली जिन जिनके साथ अकाउंट है वो तो पता है, लेकिन जो अनकॉन्शियसली क्रिएट हो रहे हैं उनका क्या करें, वो भी चुप करने पड़ेंगे, उनका क्या कसूर है। अब ये सिंपल सी बात, अगर आप कभी डिस्टर्ब हो जाते किसी कारणवश डिस्टर्ब हो जाते, कुछ भी कारण हो, परिवार का हो, जॉब का हो, बिजनेस का हो, पुरुषार्थ का हो, किसी भी कारणवश आप डिस्टर्ब हो जाते, गलती से भी किसी को याद नहीं कीजिए, किसी भी आत्मा को याद नहीं कीजिए। अगर आप डिस्टर्ब होते हैं और किसी को याद करते, उसको कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं जिसको याद करते, उनका क्या कसूर है आपके डिस्टर्बेंस में, उनका क्या कसूर है। तो आप उनको निगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं, वो तो लौटाने वाले आपको किसी न किसी रूप में। जब आप डिस्टर्ब होते हैं तो जहां आपकी दृष्टि जाती उन सभी में आप निगेटिव ऊर्जा भरते हैं, जहां जहां आपकी दृष्टि जाती। कहते हैं ना जब डिस्टर्ब होते तो भोजन नहीं करना चाहिए, तो चलो भोजन की तो वैल्यू है, लेकिन इन तत्वों में भी तो ऊर्जा दे रहे हैं हम निगेटिव डिस्टर्ब होने के बाद। जिसके लिए बोर्ड उच्चारण करते उनको भी निगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं। बहुत सूक्ष्मता है, अनकॉन्शियसली हमारे पीछे अकाउंट बना रहे हैं, अनकॉन्शियसली हमें ध्यान नहीं कि हम अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन अकाउंट बनते जा रहे हैं। कॉन्शियसली हो तो चुप तो हो जाएंगे, एक इनका क्या करें, कि फिर अचानक से आ जाते, फिर कहते हैं कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे ही होना है क्योंकि हमने ही दिया है, हमने ही किया है। तो जब डिस्टर्ब होते हैं तो बाबा छोड़ के कभी किसी को याद नहीं कीजिए, बाबा को जब भी याद करते तो सारी ऊर्जा बाबा की तरफ निकल जाती है और सारी दसम हो जाते। तो जब भी आप किसी कारणवश डिस्टर्ब हो, गलती से भी किसी को याद या दृष्टि नहीं दीजिए, आपके साथ वो अकाउंट जुड़ जाएगा। तो ये जो धारणा है स्नेह की, हम आत्माओं में होना बहुत आवश्यक है। किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का डिसरिगार्ड करना करने का हमें अधिकार नहीं। यहां तक हमारे जूते हैं, सैंडल है, उसको भी लात मारने का अधिकार हमें नहीं है। तत्व है वो, आपकी सेवा के लिए हाजिर है, अब डिसरिगार्ड नहीं कर सकते उसका। लात मार के, लात मारना मतलब गलत इंटेंशन रख के आप उसका डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। किसी आत्मा के सामने 56 प्रकार के भोग रखे, लेकिन गलत इंटेंशन से उसने सेवन की, नुकसान होगा ना कि फायदा होगा, नुकसान ही होगा। और किसी आत्मा ने प्योर इंटेंशन से फुटबॉल को भी लात मारी तो क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। इंटेंशन चेक कीजिए, भाव, कहते ना देव भावाचा भुकेला, जो भाव है इंटेंशन उसे बदलना पड़ेगा, तब जाके हमारे में परिवर्तन आ जाएगा। अभी कोई आत्मा बहुत सालों से ज्ञान में चल रही है, कोई आत्मा है बहुत सालों से ज्ञान में चल रही है, लेकिन भाव क्या है पता नहीं है बाबा के प्रति। पर कोई आत्मा अभी चल रही है तो बाबा के लिए मन में बहुत भाव है, न ज्ञान है, न योग है, न धारणा है, न सेवा है, कुछ नहीं, लेकिन बाबा के लिए मन में इतना भाव है कि बात मत पूछिए, सच्चा भाव है। बाबा कहाँ ज्यादा रिगार्ड करेगा, अब सोचिए। किसी के पास कुछ भी नहीं है, जस्ट जल का बाबा को भोग लगा दिया, चलो जल भी नहीं है, हवा का भोग लगा दिया, ऐसे ही बोल दिया कि बाबा ये आपके लिए अर्पण है, लेकिन भाव शुद्ध है। और किसी ने 56 प्रकार के भोग बाबा को लगा दिए और भाव का पता नहीं, बाबा क्या स्वीकार करेगा। ठीक कीजिए, सारा इंटेंशन का खेल है, अंदर का इंटेंशन। परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा शुद्ध भाव ही नहीं है परिवर्तन होने का। अगर आपका इंटेंशन शुद्ध हो जाए कि परिवर्तन होना ही है, डेफिनेटली परिवर्तन हो जाएगा। तो भाव को बदलना पड़ेगा, इंटेंशन।
इंटेंशन एक ऐसी बात है जहाँ सारी प्राप्ति है, कुछ न होते हुए भी सब कुछ है, तो हमारा भाव स्नेह स्वरूप करना पड़ेगा। अगर आज तक अभी तक जो कुछ हुआ सो हुआ, सारा ड्रामा, लेकिन अभी तो बदल सकते हैं, अभी तो बदल सकते हैं, क्योंकि हमें बदलना ही पड़ेगा। और एक बात इसमें याद आई इसलिए कि कभी भी, अभी वायुमंडल ऐसे बना हुआ है, अभी का जो वायुमंडल है इतना तमो प्रधान बना हुआ है, गलती से भी किसी की भी खामियां मत दिखाइए किसी को। जिस दिन आपने किसी की खामी दिखाई और किसी को बताया कि ये ऐसे ऐसे है, समझ लीजिए आपको मुबारक हो, कुछ दिनों बाद वो आप में आ जाएंगे। अभी का वायुमंडल ऐसे बना हुआ है जिसके अंदर आप खामी देखेंगे, देख तो ली है, पता चले कि इसके अंदर ये है, ये पता है, पक्का है, क्योंकि सामने दिख रहा है, लेकिन किसी से शेयर नहीं कीजिए कि इसके अंदर ये है, क्योंकि शेयर किसने किया? आपने किया। और इसके बाद एक अच्छी बात यह है कि अगर किसी का बुरा आपने शेयर किया तो जरूर आपने वो भी आना है। वायुमंडल ही ऐसे बना हुआ है, तो अगर शेयर करना है तो किसी के गुण ही शेयर कीजिए। फिर देखिए परिवर्तन कैसे होता है। तो पहले तो भाव बदलना है बाबा के प्रति, स्नेह की भावना, हर वस्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति भाव बदलना है। बहुत अच्छे भाव से सबके साथ चलना है, चलते वक्त भी इंटेंशन अच्छा है, बैठते वक्त भी इंटेंशन अच्छा है, हर चीज हमारे सेवा के लिए की है, हर आत्मा हमारे साथ सहयोगी है, हमारी सेवाधारी नहीं है वो, हमारी सहयोगी है और बाबा की सेवाधारी है। जब हम हमारी सेवाधारी किसी को समझते हैं तो वही सब कुछ गड़बड़ हो जाती है, बहुत गड़बड़ हो जाती है। और अभी ये बात भी नोटिस कर चुके हैं कि हम ब्राह्मण बच्चों में से कुछ बच्चे अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं और जिनको ज्ञान नहीं मिला है उनको बहुत तुच्छ समझते हैं। गलत बात है ये, उनका पार्ट नहीं है, उनका भाग्य नहीं है। आपको सौभाग्य मिला है तो आप क्यों लात मार रहे हैं? उनका पार्ट नहीं है ज्ञान में आने का, तो उनको क्यों तुच्छ समझे? हम पवित्र हैं तो पवित्रता का अहंकार नहीं आना चाहिए। जिस गुण का अहंकार आता है वो गुण गुण नहीं है, अवगुण है, तो वो गुण न होने से अच्छा है। इसलिए कभी कभी वो लोग कहते हैं कि तुमसे अच्छे हम हैं, भले हमें ज्ञान नहीं है कुछ नहीं, लेकिन हम तो अच्छे हैं। हर किसी से अच्छे से तो अदा कर सकते हैं, प्यार से तो रह सकते हैं, भले हमें नहीं मिलेगा कुछ, भगवान भी नहीं मिलेगा, लेकिन हमें इंसान के नाते किससे कैसे बर्ताव करना ये तो पता है। आपको तो श्रेष्ठ ऊंचा ज्ञान मिला है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर सकते? आप कहते हो आप भगवान के बच्चे हो और ऐसा बर्ताव करना आपको शोभता है। तो ये इंटेंशन है हर आत्मा के प्रति शुद्ध होना चाहिए। आप चेक कीजिए, एक कॉन्शियसली जो कर रहे हो छोड़ दीजिए, अनकॉन्शियसली हमारे अकाउंट हमें नहीं नहीं बनाए, अभी सेटल करने का समय। इस धारणा को बहुत पक्का करना, किसी भी बात का अहंकार नहीं। बाबा कभी कभी कहते हैं ना कि बच्चे हैं आप लायक नहीं थे बैठने के लिए, यहाँ मैंने उठाकर आपको बिठाया। मतलब हम इतने नीचे गिर चुके थे, अगर वो नहीं उठाता तो उनसे भी नीचे चले जाते हैं हम। वो तो अभी उतरी है आत्माएं से भी, वो तो अच्छे हैं फिलहाल। तो हम किस बात का अभिमान कर रहे हैं, किस बात का अहंकार कर रहे हैं? जो चीज हमारी नहीं उसने दी है, उसकी चीज का अहंकार क्यों करना है? पवित्रता भी उसी ने धारण कराई है। अभी कोई भी ब्राह्मण आत्मा चैलेंज देके, हम चैलेंज देते किसी को भी, ब्राह्मण आत्मा कोई कहे कि मैं पवित्र मेरे बल पर बना हूं, कोई भी कहकर दिखाए मैं आत्मा मेरे बल पर पवित्र बनी हूं, कोई भी कहकर दिखाए, कोई नहीं है एक भी, क्योंकि पवित्रता धारण करने वाले हम नहीं थे, उसने धारण कराई है। एक भी गुण धारण करने के लायक हम नहीं थे, उसने धारण किया है। अगर उसने धारण किया है, कराया है, तो अहंकार किस चीज का, किस बात का? हर आत्मा आत्मा है, हर आत्मा के प्रति शुद्ध संकल्प होने चाहिए। तो चेक कीजिए आप, हम किस प्रकार से जाना चाहते हैं, कि किस प्रकार से जा रहे हैं, तो परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, ये कुछ बातें हैं। और एक धारणा, छोटी सी धारणा है, ये बहुत बड़ी धारणा है और संगम की सबसे ऊंची धारणा है। संगम की सबसे ऊंची धारणा, सच्चे दिल पर सहारा। कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी माना, कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी गलती हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, बाबा को सुनाना चाहिए। बाबा को हर सेकेंड का ड्रामा पता है, इस बच्चे से कौन सा विकर्म होने वाला है ये ऑलरेडी उसको पता है, कौन सी आत्मा कौन से रास्ते से कहाँ भटकने वाले सब उसको पता है, 5000 साल का पूरा ड्रामा उसको पता है। अगर उसको पता है वो बस देखना चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से कितने सच्चे हैं। अगर कहते हम उसके बच्चे हैं तो कितने सच्चे हैं, उसको ऑलरेडी पता है इससे ये होने वाला है, पहले से ही पता है, बस वो देखना चाहता है सच्चाई कितनी है मेरे बच्चों में। तो हमें देखना चाहिए हम बाबा से कितने सच्चे हैं। अगर बहुत सालों से चलने वाले आत्मा उससे जो भी छोटे मोटे मोटे नहीं हुए चलो छोटे छोटे कोई विकर्म हुए कुछ नहीं बाबा को सुनाया, और अभी 3 मास की आत्मा हर रोज बड़ा बड़ा विकर्म हुआ 3 मास के लिए रेगुलर हो रहा है और इसे रोज सुनाया, बाबा के लिए कौन है प्यारा? आप चेक कीजिए, ये बहुत महीनता की बातें हैं। बाबा जो देखता है बाबा की दृष्टि है वो बहुत अलग है। तो सच्चे दिल पर साहब राशि, सच्चा दिल रखना है कुछ भी हो जाए। हर वक्त हर समय जीवन में 2 बातें होती है, एक हमसे होती है एक हम करते हैं। जब हम करते हैं तो 2 संकल्प होते हैं, यस और नो, करे या न करे, 2 संकल्प होते हैं। और जब हमसे होती है तो हम डरते चले जाते हैं उसमें, वो खींच लेते हैं एनर्जी कर्म कराने के लिए। एक ही थॉट होता है उसको करना है, अच्छा हो या बुरा हो वो आत्मा बहती चली जाती है, उससे वो कर्म हो जाता है, हो गया उससे। उसे किसी भी आत्मा को बुरा कर्म करे ये संकल्प नहीं है, हो जाता है उससे, क्योंकि वो ड्रामा में है। जब आप करने जाएंगे तो 2 संकल्प आएंगे, यस और नो। इसका मतलब ये नहीं कोई कुछ भी करे और कहे कि मेरे से हो गया, ये गलत है, ये डिसएडवांटेज। तो होती है तो बाबा को समर्पण करनी है, बाबा को सुनानी है कि बाबा ये हो गया, क्योंकि होने के वक्त आपका कॉन्शियसनेस नहीं चलता है, ड्रामा आपको खींचता है, अच्छा हो या बुरा कर्म हो ड्रामा खींचता है। लेकिन जो भी हुआ बाबा के सामने रखना। इसीलिए किसी भी भाई बहन जो भी आत्मा आत्मा भाई ले लेंगे तो भी किसी भी आत्मा से कोई भी कर्म हो जाता है आपको उसका उच्चारण नहीं करना है, उसको नोटिस नहीं करना है। हाँ अगर आप उसके कर्म को रेक्टिफाई कर सकते हैं उसको अच्छा कर सकते हैं तो फिर आपको सलाह देने की अनुमति है, अधिकार है। लेकिन उसके जो कर्म उसने जो कर्म किया उसको आप किसी और को नहीं दिखा सकते, ये देखो कैसा है वो देखो कैसा है, ये गलत है, पहले ही बोला कि आपके पास आ जाए। इसलिए किसी का भी कर्म नहीं हमें देखना है ना, उसके कर्म की हमें कोई अंदर इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव में आना है। एक बार ऐसे ही बाबा से गुरु ज्ञान कर रहे थे तो बाबा को पूछा अगर कोई काम विकार में कोई कर्म करना है तो ये तो गलत है, तो ये तो गलत है, गलत तो गलत ही होता है हमेशा। बाबा कहते हैं वो गलत है, वो कर्म गलत है, लेकिन वो जो कर्म चल रहा है उसे देखकर तुम्हारे मन में थॉट क्यों चल रहा है कि वो गलत है? वो उनका पार्ट पे नहीं करेंगे तो क्या तुमको पार्ट पे करना है? वो हर किसी का पार्ट है, बाहर जो भी चल रहा है उस पार्ट को देखकर हम क्यों प्रभावित हो रहे हैं कि इनको कुछ समझ नहीं है ऐसे ही है वैसे। हम प्रभावित हो रहे हैं मतलब दुष्प्रभाव में आ रहे हैं, हम हमारे इंटेंशन बदल रहे हैं उनके प्रति। हर आत्मा का पार्ट है नूदा हुआ, इसलिए किसी को दोष नहीं देना है, ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, हर आत्मा निर्दोष है, ये नाटक यानी सच्चा नाटक ही है, बस बेहद का है 5000 साल का। तो इस प्रकार हर आत्मा के प्रति शुद्ध भाव और बाबा से सच्चा दे, कुछ भी हो जाए बाबा को सारी बातें सुना। तो ये धारणाएं हमें पक्की करनी पड़ेगी तब जाके परिवर्तन के नजदीक आएंगे। समय बहुत नजदीक आ रहा है, बहुत यानी बहुत, आगे चल के वायुमंडल ऐसा बनेगा कि हम योग नहीं कर पाएंगे, मूल्य नहीं पढ़ पाएंगे, स्थिति में नहीं रह पाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर और के जैसे चिल्लाना पड़ेगा। इसलिए अभी से अगर प्रैक्टिस है तो अंतमति सुगति हो जाए। समय जब समाप्ति की ओर होता है तो उसकी जो अंतमति होती है, अपने अनुभव किया होगा रात को सोते समय जो लास्ट थॉट होता है उसी थॉट में मॉर्निंग में जग जाते हैं, जो लास्ट विजन होती है उसी विजन में मॉर्निंग में जग जाते हैं। तो उसी प्रकार समय अभी समाप्ति की ओर है, एक अलग मोड ले रहा है, उस मोड के समाप्ति के लास्ट पिक पॉइंट पर हमारे मन में जो हमारी स्थिति होगी हमारे अंदर चलती रहे वही स्थिति कैरी फॉरवर्ड होगी। फिर वो वायुमंडल अगर तमो प्रधान भी है, आप बहुत अच्छे स्थिति में है, तो फिर भी उस तमोप्रधान वायुमंडल में आपकी स्थिति बनी रहे, इसलिए ये धारणाएं बहुत आवश्यक है। अभी फिर से कहते हैं किसी को भी एक्सपोज नहीं दे सकते, कोई भी आत्मा यहाँ एक्सपोज नहीं दे सकती बाबा को कि बाबा मेरे पास समय नहीं है, अंत में सब कुछ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हमें एक्सपोज नहीं देना है। अभी थोड़ा साइंस की गहराई में उतरेंगे, सच्चा आत्मा की गहराई में उतरेंगे। अभी तो ये थोड़ी ज्ञान की बातें होगी, थोड़ी और गहराई में उतरेंगे। अभी तक हम सभी आत्माओं ने सुना है कि हम आत्मा है, लेकिन शरीर में कहाँ है, कैसे शरीर को चलाती है, मुख से शब्द निकल रहे हो कैसे निकलते हैं, आंखों से देखना होता है वो कैसे देखते हैं, होता कैसे है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। इसको अगर जानेंगे नहीं तो अपने ही ज्ञान से हम परे रहेंगे, इसलिए इस बात को जानना बहुत आवश्यक है। अभी इसके पहले और एक बात रहेगी, बाबा हमेशा कहते हैं कि ये योग बुद्धि योग है, बुद्धि से याद करना है बाबा, कौन से चित्र के सामने बैठे हैं ये मैटर नहीं करता, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बुद्धि में कौन सा चित्र चल रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बुद्धि में अगर हमने कहा एप्पल और आपके सामने चित्र आया एक इमली जिसको तीखा और नमकीन लगाया हुआ है, आपके मुंह में डाले जा रहे हैं, वाइब्रेशंस किसके आएंगे, इमली के आएंगे, क्योंकि जो चित्र देखा बुद्धि से उसी के वाइब्रेशंस आने हैं, तो इमली के ही आएंगे। तो बुद्धि से आप जिसको देखते हैं उसी के चित्र उसी के वाइब्रेशन आपके मन में उत्पन्न होते हैं, मन बुद्धि में उत्पन्न होते हैं। तो ये योग बुद्धि योग है सच में। अगर आप थिएटर में भी बैठे हैं लेकिन बुद्धि में चित्र चल रहा है परमधाम और बाबा का, आप योग में हैं। बाबा के कमरे में मधुबन में भी बैठे हैं पांडव भवन में लेकिन बुद्धि में कहीं और चित्र चल रहा है, योग नहीं है, योग बुद्धि से किया जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं सज राज योग, चलते फिरते भी कर सकते, याद करना मना रिमेम्बरेंस सिंपल है, किसी चीज को याद करना, बाबा को याद करना है बुद्धि से, बाबा का चित्र निर्माण करना, मन क्या संकल्प चला रहा है ये मैटर नहीं करता, यहाँ पर बुद्धि में क्या चित्र चल रहा है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं छोटे बच्चे को तो कहते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, उसको स्पेलिंग नहीं पता शब्दों की, उसको बस वो प्रोनाउंसिएशन पता है और उसको चित्र पता है कि ए फॉर एप्पल ऐसे होता है। अगर छोटे बच्चों को हमने पढ़ाया ए फॉर अमेरिका, बी फॉर व्यापक, सी फॉर कैलिफोर्निया, डी फॉर डेनमार्क, तो क्या विजुलाइज करेगा, कुछ नहीं याद करेगा। तो बुद्धि से सारा कुछ खेल किया जाता है। जिस आत्मा ने अपनी बुद्धि को क्लीन किया, क्लीन के करना मतलब जो संकल्प किया वही चित्र बुद्धि में उमड़ रहा है, मतलब बुद्धि की लाइन किया। जैसे अभी थोड़े समय पहले हमने देखा, मैं बोला तो मैं, बाबा बोला तो बाबा, मधुबन बोला तो मधुबन, परमधाम बोला तो परमधाम, सूक्ष्मतम बोला तो सूक्ष्मतम, इसी प्रकार जो शब्द उच्चारण करते हैं उसी का अगर चित्र निर्माण होता है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन हाई है और आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है। तो क्लियर लाइन में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पावरफुली होता है। तो आप चेक कीजिए कि आपकी बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है, क्योंकि योग बुद्धि से किया जाता है हमेशा। कहाँ बैठे हैं, बहुत बार आप आत्माओं ने अनुभव किया होगा, जब चित्र के सामने बैठते तो धीरे धीरे चित्र भी धुंधला हो जाता है और हम अलग स्थिति में चले जाते हैं ऊपर और सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट को ऊपर देखते रहते हैं, फिर बहुत अच्छा अच्छी महसूसता आती है, यही योग है। इसलिए बुद्धि से ही करना है, चित्र को देख कर कुछ नहीं होगा। बाबा कहते ना चित्र को नहीं देखना है, विचित्र को याद करना है, और हमेशा याद बोलते हैं। तो याद से क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होते हैं। और ये भी महावाक्य कहे हैं कि किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, इसका भी साइंस आपको बताते हैं थोड़ा सा। किसी भी हिलर के पास हम जाएंगे तो आपको बताएंगे, जिस आत्मा को रेगुलरली, जिस आत्मा के शरीर को रेगुलरली 6 महीने के लिए अगर आप याद करके, 6 महीने के लिए, सिर्फ 6 महीना, तो उसके अंदर की सारी बीमारी आपके अंदर आ जाएंगी, सिर्फ 6 महीने सारी बीमारी आपके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि आपने किसको याद किया, उस आत्मा को और उसके शरीर को। तो आपने आपका संग किससे किया, उससे किया, तो रंग किसका लगना है, उसका ही लगना है। तो वहां की सारी एनर्जी आपकी ओर ट्रैवल हो जाती है, अपने आप ट्रैवल हो जाएगी। तो जिसको याद करते उसकी एनर्जी हमारी ओर ट्रैवल होती है और हमें वो महसूसता दिलाते हैं। इसलिए बाबा को हमेशा बुद्धि से याद करना है। फिर से कहते हैं चित्र नहीं देखना है, बुद्धि से याद, बुद्धि ऊपर लटकी रहे बाबा के पास। तो अभी ये जो टॉपिक बोल रहे थे कि आत्मा, आत्मा कैसी है, आत्मा कैसी है उसको पूरी रीति हम जानेंगे। अभी तक सुना है कि आत्मा है, लेकिन कहाँ है, इस ब्रेन में कहाँ है, कार्य कैसे करते हैं, मुख से शब्द कैसे निकलते हैं, इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे आत्मा जो है, अभी तक के पढ़ाई के अनुसार आपने अगर पढ़ा होगा, तो यहाँ से 3 इंच अंदर, यहाँ से 9 इंच अंदर ब्रेन में चले जाते हैं। तो ब्रेन में एक पोर्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, बीच में एक पोर्शन है छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस का, वहां एक छोटी सी स्पेस है, वहां आत्मा रहती है, वहां वो अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट है, वही आत्मा का अकाल तत्व है, वहां से आत्मा कार्य करती है। अभी तक आप देखिए हम आत्मा कर सकते हैं। और एक फाइनल पॉइंट 2 मिनट का, अभी हम बहुत अच्छे से योग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ज्ञान में चल रहे हैं। अब सभी को पक्का यकीन है, पक्का निश्चय है कि बोलने जाएगा, पक्का निश्चय है बोलने जाएगा, आएगा। ओके, बहुत अच्छा। अगर कल को बाबा ऐसी बोली चलाता है कि बच्चे बोलने नहीं आएगा, चलो हम संगम में मजे करते हैं, क्या रिएक्शन होगा? बहुत अच्छी बात है, हवा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो सच में। अब चेक कीजिए, अगर गोल्डन एज नहीं आता ऐसे बाबा बोल देता है तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? अरे पहले तो तूने बताया पुष्प कुमार विमान दूंगा, सुने के घर दूंगा, अभी गोल्डन नहीं आएगा, ऐसी कैसी बात होगी? फिर इतनी मेहनत क्यों की हमने, क्लास में रोज सुबह में आना, 4 बजे अमृत वेले उठना, ये सब करना, इतनी मेहनत करवाई और अभी गोल्डन पर नहीं दूंगा। अगर किसी आत्मा ने 50 साल से पुरुषार्थ किया है, उसको बाबा पास बुलाकर कहते हैं कि बच्चे मैं तुझे मैं पृथ्वी में लाऊंगा, मैं त्रेता में द्वापर के अंत में लाऊंगा, क्या रिएक्शन है? अब चेक कीजिए, हम गोल्डन एज के लिए योग कर रहे हैं या बाबा से प्यार है इसलिए योग कर रहे हैं? गोल्डन एज एक छोटा सा लॉलीपॉप है, मिठाई है। छोटे बच्चे को जब मिठाई लेके आते हैं ना, तो उस मिठाई को देखता रहता है कि कब मिलेगी, मुझे दे दो अभी चाहिए। वैसे हम गोल्डन एज को देख रहे हैं कि कब वो पुष्प कुमार मिलेंगे, वो 56 प्रकार के भोग मिलेंगे, उसको नहीं देखना है। जो दे रहा है उसकी इतनी ताकत है कि उस लॉलीपॉप की फैक्ट्री आपको दे सकता है, ऐसी कितने गोल्डन एज आपके लिए बना के दे सकता है, इतनी ताकत है उसकी, तो उसको नहीं देखना है, उस छोटे से लॉलीपॉप को देने वाला जो है उसको देखना है। अभी और गहराई वाली बात, अभी गोल्डन एज तो आ रहा है, एक हाथ से गोल्डन एज आ रहा है, दूसरे हाथ से देने वाला जा रहा है। 4,900 साल रुकना पड़ेगा उसके लिए, जिसके लिए 2,500 साल से भक्ति की है, इतना माथा मारा है, काशी कलवट खाए हैं, उसके लिए 4,900 साल, उसमें भी किसका पाठ कब है संगम में पता नहीं, कब ज्ञान मिलेगा, वो कब मिलेगा। तो बाबा कुछ भी दे रहे, आगे चल के निश्चय की कैसे भी एग्जाम हो सकते, कुछ भी, अभी झाड़ हिलने का समय है, वो कुछ भी उत्पतंग हो सकता है, लेकिन आपको निश्चय रखना है हर बात के ऊपर, नहीं मिलेगा चलेगा तेरी मर्जी, नहीं मिलना है तो मत दे, तू मिला मुझे सब कुछ मिला, मुझे नहीं चाहिए तेरा गोल्डन एज, तुम ही सब कुछ है मेरे लिए। तो आप चेक कीजिए, हम गोल्डन एज के लिए योग कर रहे हैं या बाबा के लिए करते हैं? ये शुद्ध भाव, निस्वार्थ भाव जब हो जाएगा, आपको क्या लगता है कि कौन सी आत्माएं सतयुग में आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए, कौन सी? हम सभी तो आएंगे, कौन सी जरूर आएंगे, कौन सी? सच्चे दिल से, बहुत अच्छा। जिन आत्माओं को गोल्डन एज तिल मात्र भी चाहना नहीं है, वही गोल्डन एज में आएंगे। जिनको सच्चा प्यार है बाबा से, गोल्डन एज मिले न मिले, वही सतयुग की आदि में आएंगे। जिनको जो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगी। एक बार एक भाई ने अनुभव सुनाया था, उन्होंने कहा, बाबा ने कहा था, उन्होंने पांडव भवन की भाई थे, उन्होंने अनुभव सुनाया था, पांडव भवन में यह समर्पित भाई है, कि बाबा ने एक बार कहा कि मुझे 108 की माला बना के लाओ। तो माला तो बना के लाई, बाबा के सामने रखी, बाबा ने ऐसी साइड में, बाबा ने कहा मेरी नजर में जो है वो आपकी नजर में नहीं है, और आपकी नजर में जो है वो मेरी नजर में नहीं है, तो उसकी नजर में कौन से है आप चेक कीजिए। गोल्डन एज की तिल मात्र भी आश नहीं रखनी, उसकी आश रखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, नहीं तो कहेंगे तेल भी जाएगा और घी भी जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। आज एक एक चीज को पकड़ना है, या तो घी या तेल, घी है तो उसमें तेल भी मिल जाएगा अपने आप, शुद्ध है, बाबा को पकड़ लीजिए, तेल को नहीं, गोल्डन एज को नहीं पकड़ना है। बेहद का स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ है यही गोल्डन एज, उसके लिए सच्चे दिल से प्यार करना है। तो ये सारे सॉल्यूशंस आज की क्लास में आपने जो भी डिस्कशन में सुना, वो सारा जो भी आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में जितना भी अच्छा लग रहा है धारण कीजिए। और हमेशा याद रखिए, कुछ भी हो जाए हम बाबा के और बाबा ओम शांति।